प्यारे दोस्तों, आप लोग जो ये कहानी पढ़ रहे हैं और इसे महसूस कर रहे हैं और जितनी हमदर्दी अरुणिमा के लिए दिखा रहे हैं वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन जब आप लोग आस्तिक को भला बुरा कहते हैं, उसके लिए गालियां देते हैं और कमेंट में नकारात्मक बातें लिखते हैं, तब यकीन मानिए मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। सच में दोस्तों, जब आप आस्तिक के लिए अपनी नफ़रत दिखाते हैं तब मुझे एहसास होता है कि जिस तरीके से मैंने आस्तिक का किरदार डिज़ाइन किया था वो पूरी तरह सफल हो रहा है। और यकीन मानिए, आने वाले एपिसोड्स में आपको आस्तिक से और ज़्यादा नफ़रत होने वाली है। जितने अपशब्द अब तक आपने कहे हैं, मैं दावे से कह सकती हूँ कि आगे के एपिसोड्स में वो इससे भी ज़्यादा का हकदार होगा। तो अब तक आपने जो कुछ भी कहा है उससे एक कदम आगे बढ़िए और उसके लिए कोई भारी भरकम नए शब्दों का आविष्कार करिए, क्योंकि ये सारे शब्द आस्तिक के किरदार के सामने छोटे नजर आ रहे हैं। बीस्ट ने तो अभी सिर्फ झलक ही दिखाई है, असली बीस्ट से तो अभी तक आप सब मिले ही नहीं हैं। बस थोड़ा और इंतज़ार, जब आपको लगेगा कि इससे बड़ा और क्या हो सकता है तब आस्तिक रायचंद अपना असली चेहरा दिखाएगा। और जहाँ तक अरुणिमा के स्ट्रांग होने की बात है तो वो बहुत स्ट्रांग है। आस्तिक जैसे इंसान को बर्दाश्त करना ही उसकी पावर है, लेकिन उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। और जो आप लोग चाहते हैं वो भी होगा, लेकिन अगर मैं सब कुछ पहले ही ठीक कर दूंगी तो आगे की कहानी में क्या लिखूंगी। अब वापस चलते हैं कहानी पर और फिर से चलते हैं होटल के उस VIP स्वीट में जहाँ आस्तिक ने अरुणिमा को फिर से चोट पहुँचाई थी। 2 घंटे बाद आस्तिक शीशे के सामने खड़ा अपनी टाई ठीक कर रहा था। उसने रिफ्लेक्शन में बेड पर खुद में सिमटी हुई अरुणिमा को देखा। अपनी हैवानियत दिखाने के बाद वो कैसे उम्मीद कर सकता था कि इस सिचुएशन में अरुणिमा मुस्कुराएगी। बिना कपड़ों के अरुणिमा एक कोने में सिकुड़ी हुई थी और खुद की अस्मिता को चादर में ढके हुए थी। उसका पूरा चेहरा मासूमियत और निराशा से डूबा हुआ था। ना आंखों में कोई सपना था, ना ही चेहरे पर कोई चमक। आंखों के आंसू सूख चुके थे और सिसकियां अब सन्नाटे में तब्दील हो चुकी थीं। लेकिन शायद आस्तिक को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे जो करना था वो कर चुका था। अरुणिमा चीखती रही, चिल्लाती रही, खुद को छोड़ने की भीख मांगती रही, लेकिन ये शैतान अपने इरादों को अंजाम देता रहा। आज तो उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि अरुणिमा के लिए ये सब बिल्कुल नया था। आस्तिक के अलावा आज तक उसने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और जब आप किसी के करीब जाते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि वो कंफर्टेबल महसूस करे, लेकिन आस्तिक को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अरुणिमा कंफर्टेबल है या नहीं। आस्तिक पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वो अपने कोट का कॉलर ठीक करते हुए बोला, तुम्हें तैयार होने के लिए इन्विटेशन देना पड़ेगा। उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर अरुणिमा एक बार फिर सिहर गई। घबराई हुई नज़रों से उसने आस्तिक को देखा जो धीरे धीरे बेड के पास आने लगा। अरुणिमा खुद को पीछे खींचने लगी, लेकिन आस्तिक बेझिझक उसके सामने बिल्कुल कोने में आकर बैठ गया और झुकने लगा। उसी पल अरुणिमा ने खुद को कसकर समेट लिया और चादर को मजबूती से पकड़ लिया। ये देखकर आस्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसके महज मौजूद होने से ही अरुणिमा इतनी सहमी हुई थी कि वो उसके करीब आने से भी डर रही थी। आस्तिक उसी शैतानी मुस्कान के साथ झुककर साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाता है और एक नज़र स्क्रीन पर डालता है। फिर फ़ोन स्क्रीन ऑफ करके पॉकेट में रखते हुए बोला, जल्दी तैयार हो जाओ। वैसे भी मुझे तुम्हारे बाप को अस्पताल में देखने का कोई शौक नहीं है, पर क्योंकि ये ऑर्डर मेरे बाप ने दिए हैं तो मुझे मानने ही पड़ेंगे। और हाँ, मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बाप जिंदा है या मर चुका है। मैं यहाँ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने आया हूँ, वो आगे बोला। और अगर जल्दी रेडी होकर बाहर नहीं आई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुंबई की फ़्लाइट वापस पकड़ने में। वैसे भी मैं वहाँ पर अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे घायल बाप को देखने आया हूँ। एक अच्छे दामाद का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ मैं, और तुम हो कि मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। अरुणिमा की आंखें डर से बड़ी हो गईं। वो घबराई हुई नज़रों से आस्तिक को देखने लगी, लेकिन उसकी शैतानी मुस्कान अभी भी बरकरार थी। उसने ऊपर से नीचे तक अरुणिमा को देखा और एक घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम्हारा हॉस्पिटल जाने का कोई प्लान नहीं है। तुम चाहो तो हम एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं, और इस बार पहले से भी ज़्यादा वाइल्ड होगा। तो बताओ क्या इरादे हैं तुम्हारे। अरुणिमा का पूरा शरीर जकड़ गया। वो जल्दी से अपनी बेडशीट को संभालते हुए खड़ी हुई। हालांकि उसके पैर सुन्न हो चुके थे, चलना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। लगातार 2 घंटे तक वो आस्तिक की हैवानियाँ झेल चुकी थी। उसके लिए ये दर्द सह पाना पहले ही बहुत मुश्किल हो चुका था, लेकिन अब आस्तिक की धमकी उसे और ज़्यादा डरा रही थी। वो ये सब फिर से नहीं सहना चाहती थी, ना ही उसका शरीर इसके लिए तैयार था। इसीलिए वो जल्दी से किसी तरह खुद को संभालते हुए बाथरूम की तरफ भागी। वो बाथरूम में घुसी और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर जाकर उसे पता था कि उसके पास रोने का भी वक्त नहीं है, दर्द निकालने के लिए भी नहीं। उसे जल्दी से तैयार होना था। किसी तरह खुद को फ्रेश करके उसने एक पेन किलर खाई ताकि दर्द कुछ देर के लिए कम हो सके। इसके बाद वो एक साधारण सलवार सूट में तैयार हो गई। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आई, आस्तिक सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। उसने एक कश लिया, धुआं हवा में उड़ाया और अरुणिमा को देखकर अपनी उंगलियों से इशारा किया, आओ मेरे पास। अरुणिमा डर गई। उसने जल्दी से अपने कपड़ों को मुट्ठी में कस लिया और धीरे धीरे आस्तिक के करीब जाने लगी। कमरे में सिगरेट का धुआं बढ़ता जा रहा था, पर अरुणिमा की घुटन की वजह कुछ और ही थी। वो अपना चेहरा नीचे किए डरते हुए आस्तिक के करीब पहुंची और थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। आस्तिक ने सिगरेट के बचे हुए टुकड़े को एस्ट्रे में दबाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना मेरे लिए मेरा नाम और मेरी रेपुटेशन क्या मायने रखती है। वो आगे बोला, तुम तो इस बात की जीती जागती मिसाल हो। जब तुमने मेरी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की थी और तुम्हें उसकी कीमत अपनी सो कॉल्ड बॉडी से चुकानी पड़ी थी, अब सोच लो फिर से वही गलती दोबारा करने जा रही हो। अरुणिमा आस्तिक की बातों से पूरी तरह कांप गई थी, लेकिन ये सच था। उसे आज भी वो रात याद थी जब आस्तिक ने उसकी मर्जी के बिना उससे संबंध बनाए थे, और अब वो फिर से उसी चीज की धमकी दे रहा था। पर इस बार अरुणिमा ने क्या किया था, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो हैरानी से आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम इन कपड़ों में बाहर जाओगी तो मेरी रेपुटेशन क्या रहेगी? लोग सोचेंगे कि मैं अपनी बीवी को महंगे कपड़े तक नहीं दे सकता जो ये नौकरों जैसे कपड़ों में घूम रही है। वैसे मेरे घर के नौकर भी तुमसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन यहाँ बात मेरी रेपुटेशन की है। बाहर लोग तुम्हें इन कपड़ों में देखेंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे बारे में 100 बातें बनाएंगे, और मैं अपने बारे में सिर्फ तारीफ सुनना पसंद करता हूँ। अरुणिमा ने काइंस के अपनी आंखें बंद की और अपना चेहरा झुका लिया। वो जल्दी से अपने लगेज के पास गई, वहां से एक ढंग की साड़ी निकाली और बाथरूम में चली गई। अब उसे जल्द से जल्द तैयार होना था, क्योंकि अगर उसने आस्तिक को ज्यादा इंतजार करवाया तो अंजाम बुरा हो सकता था, और वो इस समय किसी भी बुरे अंजाम के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। जल्दबाजी में उसे साड़ी बांधनी भी मुश्किल हो रही थी, इसीलिए उसने जहां जहां साड़ी खुलने की संभावना थी वहां सेफ्टी पिन लगा दिए। एक बार फिर से अरुणिमा आस्तिक के सामने खड़ी थी। आस्तिक के हाथों में फिर से जलती हुई सिगरेट थी। वो अरुणिमा का इंतजार खाली बैठकर तो नहीं कर सकता था, इसीलिए सिगरेट के सहारे टाइम पास कर रहा था। लेकिन इस बार जब उसने अरुणिमा को देखा तो उसकी नजरें ठहर गईं।
साड़ी में अरुणिमा की खूबसूरती निखर कर आ रही थी। उसके छोटे से बदन पर साड़ी किसी खूबसूरत कली की तरह लिपटी हुई थी। अचानक आस्तिक को एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसे गर्मी का एहसास हो रहा था। वैसे भी उसे अब अरुणिमा के बदन की आदत हो चुकी थी। ऊपर से अलग अलग कपड़ों में उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग नजर आता था। इस बार उसका परफेक्ट फिगर आस्तिक के सामने था। आस्तिक खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा होने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा, निखिल की कॉल थी। निखिल इस समय मुंबई में था, लेकिन उसने यहाँ के सारे इंतजाम करवा दिए थे। आस्तिक ने फोन रिसीव किया, निखिल ने कुछ कहा और ओके कहकर आस्तिक ने फोन काट दिया। अगले ही पल वो अरुणिमा के पास आया और उसकी बाजू पकड़ ली। अरुणिमा एकदम से कांप गई, लेकिन आस्तिक ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मन तो बहुत है कि तुम्हारी इस खूबसूरत साड़ी को तुमसे अलग कर दूं, लेकिन फिलहाल खुद को काबू में रख रहा हूं। पर ये काबू में कब तक रहेगा ये मैं भी नहीं जानता, इसलिए जब तक है तब तक बाकी के काम निपटा लेते हैं। अरुणिमा उसके शब्दों का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। आस्तिक उसे अपने साथ खींचते हुए कमरे से बाहर ले गया। वो तेज कदमों से चल रहा था, जबकि अरुणिमा के लिए इतना तेज चलना मुश्किल था। शुक्र था कि उसने हील्स नहीं पहनी थी, वरना अब तक वो जमीन पर गिर चुकी होती। आस्तिक उसे सीधे लॉबी में लाकर छोड़ देता है, फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बाल सही करो। अरुणिमा डरते हुए जल्दी से अपने बालों पर हाथ फेरती है और उन्हें सही करने की कोशिश करती है। आस्तिक अपने कोट का कॉलर एडजस्ट करता है और फिर उसकी तरफ देखकर कहता है, मुस्कुराओ। डर के मारे पीले पड़े चेहरे पर अरुणिमा मुस्कुराई कैसे? वो घबराई हुई नजरों से आस्तिक को देखने लगी। क्या पागल इंसान है ये, उसे इतना टॉर्चर करने के बाद अब मुस्कुराने को कह रहा है। मुस्कुराना तो छोड़ो, अरुणिमा के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान तक नहीं आ सकती थी। लेकिन अगले ही पल आस्तिक ने उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। अरुणिमा के पूरे बदन में झुनझुनी सी दौड़ गई। वो एकदम से कांप गई। वो अपने कदम पीछे करने लगी, लेकिन आस्तिक ने दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख दिया और उसे करीब खींचते हुए कहा, मेरी बीवी होने का तुम्हें एक ही फायदा हो रहा है, तुम लोगों के सामने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हो, सबका ध्यान तुम्हारी तरफ होता है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। आखिर इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसे मिसेस आस्तिक रायचंद के खिताब से नवाजा गया है। इससे पहले कि अरुणिमा कुछ समझ पाती या आस्तिक के शब्दों का मतलब निकाल पाती, लॉबी का दरवाजा खुला। आस्तिक मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखने लगा, लेकिन तभी अरुणिमा को कैमरों की फ्लैशलाइट और क्लिक की आवाजें सुनाई दी। वो एकदम से चौंक गई और बाहर की ओर देखा। लॉबी के बाहर प्रेस और मीडिया के लोग खड़े थे जो उन दोनों की तस्वीरें ले रहे थे। अब जाकर अरुणिमा को सारी बात समझ में आई। वो एकदम से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलती है। उसने जल्दी से खुद को जबरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया और मुस्कुराते हुए आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक के चेहरे पर तो ऐसी मुस्कान थी जैसे उसे अरुणिमा से दिल, जान, जिगर, किडनी, फेफड़ा, कलेजा, हर एक अंग से प्यार हो। आस्तिक ने अरुणिमा के साथ एक परफेक्ट कपल पोज दिया। इसके बाद मीडिया के कुछ बड़े न्यूज चैनलों के सवालों के जवाब दिए। तब तक सिक्योरिटी आ गई, जिसने मीडिया वालों को दूर किया। आस्तिक अरुणिमा को लेकर सीधे पार्किंग एरिया में पहुंचा। वहां उनके लिए एक लैम्बोर्गिनी पहले से तैयार खड़ी थी। ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाजा खोला और आस्तिक अरुणिमा को लेकर गाड़ी में बैठ गया।
गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही लैम्बोर्गिनी सड़क पर दौड़ने लगी। अरुणिमा बेचैनी से अस्पताल पहुंचने का इंतजार कर रही थी। उसे जल्द से जल्द अपने पापा से मिलना था। हालांकि उसे पता था कि उसके पापा बस जख्मी हुए हैं और अब खतरे से बाहर भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक वो उन्हें देख नहीं लेती उसे चैन नहीं मिलने वाला था। आस्तिक जब से गाड़ी में बैठा था तब से ही अपने फोन में कुछ कर रहा था, लेकिन जब उसका काम खत्म हो गया तो उसने पलटकर अरुणिमा की तरफ देखा। अरुणिमा का हल्का उतरा हुआ चेहरा खिड़की की तरफ झुका हुआ था। लैम्बोर्गिनी के अंदर एसी चल रहा था और उसकी ठंडी हवा में अरुणिमा की लट बार बार उसके गालों से टकरा रही थी। आस्तिक ने एक बार अरुणिमा को ऊपर से नीचे तक देखा और तभी उसकी नज़र अरुणिमा की साड़ी के अंदर से झांकती उसकी कमर पर जा टिकी। बेवफा सेफ्टी पिन, गलत वक्त पर धोखा दे गई थी। अरुणिमा खास तौर पर चाहती थी कि उसकी कमर नजर न आए, इसलिए उसने वहां दो सेफ्टी पिन लगाए थे, लेकिन पता नहीं कब और कैसे वो दोनों सेफ्टी पिन खुलकर गिर गए थे। अब उसकी गोरी और पतली कमर आस्तिक की नजरों के सामने थी। उसकी खुली कमर को देखकर आस्तिक अपने अंदर की आग को कंट्रोल करने में असमर्थ हो रहा था, लेकिन जब आस्तिक की नज़र अरुणिमा की उड़ती हुई साड़ी के किनारे से उसकी नाभि पर गई तो उसकी आंखों में हल्की सी शरारत उभर आई। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर वो अरुणिमा के साथ फिजिकल होता है और अरुणिमा प्रेग्नेंट हो जाती है तो दिन ब दिन उसका वजन बढ़ता जाएगा। उसकी पतली कमर प्रेग्नेंसी की वजह से मोटी हो जाएगी और डिलीवरी के बाद भी कुछ औरतें अपना वजन पहले जैसी शेप में नहीं ला पाती, वो धीरे धीरे और ज्यादा भारी हो जाती हैं। यही सोचते हुए आस्तिक ने अपने मन में अरुणिमा की एक गोल मटोल भारी भरकम शरीर वाली छवि बना ली।